सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों के सफर में हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित है। एक नए नैतिक मूल्य के लिए चर्चा में आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों, दुनिया में आज हर कोई सबका प्रिय बनना चाहता है, हर कोई सफलता के ऊंचाइयों के मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इसके लिए जीवन में जिस क्वालिटी की, जिस नैतिक मूल्य की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एडजस्टमेंट, द वर्च्यू ऑफ एडजस्टमेंट। तो चलिए इस नैतिक मूल्य पर हम मंथन करें, विचार करें, चर्चा करें, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज पधारी हैं बीके अनिता बेन। बीके अनिता बेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे शो पर बहुत बहुत वेलकम है। दर्शकों, बीके अनिता बहन ब्रह्मा कुमारी संस्था से 34 वर्षों से जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से हैं, और 26 वर्षों से ये समर्पित रूप से इस आध्यात्मिक संस्था में अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी, समायोजन का क्या शाब्दिक अर्थ है, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
क्योंकि देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता है, चाहे वो जंगल में भी क्यों न चला जाए, लेकिन उसके जीवन का कई लोग कारण बनते हैं, चाहे वो जंगल के जीव जंतु हो, हवा हो, पानी हो, और अदरवाइज जो पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो उनको तो मिलजुल करके रहना ही होता है। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप वैरायटी बैकग्राउंड वाले लोग हो
जी,
तो रुचियां सबकी अलग अलग हैं, वे ऑफ थिंकिंग सबका अलग अलग है, वे ऑफ डूइंग सबका अलग अलग है, तो उन सबका अलग अलग होते हुए भी आप व्यवहार में मेलजोल बना सको
जी,
उनके साथ निभा सको। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है
जी,
अब ऑर्केस्ट्रा में तबला भी बजेगा तो हारमोनियम भी बजेगा तो कहीं सितार और बांसुरी भी होगी, लेकिन अगर एक सही रिदम में उसको बजाया जाए तो म्यूजिक होता है। ऐसे ही वैरायटी टेस्ट और वैरायटी एक्टिविटीज के लोग अगर मिलजुल करके चल सके तो उसको हम एडजस्टमेंट की कला कहते हैं।
जी जी, कितने प्रकार का होता है एडजस्टमेंट?
एडजस्टमेंट कहीं छोटों को बड़ों के साथ करना है
जी,
उसके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत है,
जी,
कहीं बड़ों को छोटों के साथ एडजस्ट करना है
जी,
तो बहुत ज्यादा लवफुल होने की जरूरत है,
जी,
कहीं बराबर वालों के साथ आपको एडजस्ट करना है,
जी,
कहीं आपको सोसाइटी में पड़ोसियों के साथ आप एडजस्ट करते हैं, कहीं आप नेचर के साथ एडजस्ट करते हैं, आप इको फ्रेंडली एक्टिविटीज यूज करते हैं,
मतलब जीवन के हर क्षेत्र में एडजस्टमेंट पावर आज बहुत,
बहुत
जरूरी है।
जरूरी
तो
है।
इसका क्या महत्व है, मैं चाहूंगी आप इसके महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि जिसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, इस नैतिक मूल्य पर।
ये परिवारों को जोड़ने वाला गुण है
जी,
और ऐसा समझिए कि इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। वर्तमान समय पिछले पूरे एक शताब्दी से जो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका बहुत बड़ा कारण शायद एडजस्टमेंट ना हो पाना भी है। न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं। पहले तो नारा आ गया था हम दो हमारे दो, दादा दादी नहीं है, आगे ग्रैंडसन ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो उस तरह का रूप सोसाइटी में सामने आया था, लेकिन अब हम दो हमारे दो वाला परिवार भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बजाय एक परिवार के चार लोग हैं तो एक एक का अपना अपना परिवार हो गया, हर एक को अपनी गाड़ी, अपना टीवी, अपना फोन, अपना रूटीन अलग चाहिए, दूसरा उसके अंदर दखल ना दे, और अगर दूसरा उसके अंदर दखल देता तो सेपरेट हो जाते हैं। हमने तो कई मल्टीपोलिटन सिटीज में यहाँ तक भी आंखों से देखा है कि घर में एडजस्टमेंट ना होने से बेटियां पीजी में अलग रह रही है, बेटा पीजी में अलग रह रहा है, और डैडी जी ओल्ड एज होम में अलग चले गए हैं, तो चार मेंबर भी आपस में मिलकर के नहीं रह सकते हैं। तो जब तक एडजस्टमेंट नहीं हमें करनी आएगी तब तक हम एक वास्तविक इंसानी जीवन का जो आनंद है वो नहीं ले पाएंगे।
जी, जैसे अभी आपने रिश्तों की बात कही फैमिली में, तो फैमिली में हम रिलेशंस में कैसे इस धारणा को बनाए रख सकते हैं, एडजस्टमेंट पावर को बना सकते हैं, इसकी भूमिका वहां पर क्या होगी?
बहुत बड़ी भूमिका है
जी।
इसके लिए थोड़ा बड़ा दिल रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो, एक माँ है, माँ ने दो बच्चे पैदा किए, एक बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, फिट है, पर चांस दूसरा बच्चा क्रिपल्ड पैदा हो गया है। अब माँ क्या करेगी? क्रिपल्ड बच्चे को घर से निकाल नहीं देगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर भी देनी पड़े, लेकिन दोनों की बराबर पालना करेगी तो उसका परिवार ठीक तरह से चल सकेगा। और माँ जैसा बड़ा हृदय हमको चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर हमको अच्छे से अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे से बुरे लोग भी मिलेंगे। अगर हमें जहाँ अच्छे लोग मिले हम उनके ऊपर डिपेंड करने लग जाएं, और जहाँ बुरे लोग मिल गए उनसे हेट करने लग जाएं, तो आखिर हमारे जीवन का हाल क्या होगा? फिर हम लोग इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि अच्छे के बिना जी नहीं सकेंगे, और बुरे के साथ भी जी नहीं सकेंगे। और कोई भी ऐसा नहीं होता इस दुनिया के अंदर जो सदा 24 घंटे हर सेकंड आपके साथ रह सके, तो इसलिए सबके साथ निभा सकना ये जीवन का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है।
बिल्कुल सही। लेकिन दीदी, कभी कभी ऐसा होता है रिलेशंस में हम अपनी अपेक्षाओं को, अपने नीड्स को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि हम एडजस्ट करना जरूरी नहीं समझते, या करना नहीं चाहते, या कर नहीं पाते हैं, तो कैसे उस समय उसे मेंटेन करें?
क्योंकि अपनी अपेक्षाओं को महत्व देना बुरा तो नहीं है
जी।
अपनी अपेक्षाएं हर इंसान की होती है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि आपकी अपेक्षाओं में कुछ एडिशन चाहिए
जी।
आप दूसरे के कंफर्ट्स को, दूसरे के सुख को भी अपनी अपेक्षा में शामिल कर लीजिए।
हम अपने कंफर्ट लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं,
तो हम छोटे हो गए,
उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते,
इसलिए थोड़ा सा बड़ा होने की जरूरत है। जब तक हम बड़े नहीं होते हैं ना, तब तक ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती है। जैसे ओशन होता है, ओशन बहुत बड़ा है, तो उसमें आप साफ पानी वाली नदियां भी डाल दीजिए, 6 साफ पानी की नदियां डाल दी, 4 गंदे पानी की नदियां भी अगर आपने डाल दी, तो टोटल ओशन
समायोजित करता है,
सबको समायोजित भी करता है, और सरफेस पर वो साफ दिखाई पड़ता है
जी।
तो ऐसे ही अपने आप को बड़ा करने की जरूरत है। जब अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, तब हमें ये बात समझ आ जाती है कि दूसरे के हित में भी अपना हित होता है। अपने यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हम एक स्लोगन यूज करते हैं कि देना ही लेना है।
बहुत सुंदर।
जब आप देते हैं किसी को, तो वो जैसे वो फ्रेज है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ ही वापस आने वाला है। और वो एक बीज का काम करता है जो आपका बहुत बड़ा और सुंदर भाग्य का निर्माण करने वाला है। तो हम समझते हैं कि अपेक्षाएं पूरी करने के लिए भी थोड़ा सा दूरदर्शी होने की जरूरत है कि अपेक्षाएं भी लिमिटेड ना रखो, थोड़ी सी बड़ी करके अपेक्षाएं रखने की जरूरत होती है।
ये तो संबंध संपर्कों में हमें आपने बताया कि बड़ा दिल रखने की जरूरत है, लेकिन अब थोड़ा बड़े रूप में सोचें, समाज में, विश्व में या देश में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी?
क्योंकि जैसे हमने पहले बात की है कि इंसान अकेला नहीं है, उसको सिर्फ अपने परिवार में तो नहीं अंदर दीवारों के अंदर छिप करके बैठे रहना ना, तो परिवार तो समाज से जुड़ा हुआ है,
बाहर भी समाज कर्म क्षेत्र में,
कर्म क्षेत्र पर भी जाएगा। कुछ आपके कंट्री लॉज होते हैं, कुछ आपके सोशल लॉज होते हैं, आप अपनी फैमिली की खातिर अगर सोशल लॉज ब्रेक करने लग जाएंगे तो उसका प्रभाव आपकी फैमिली पर भी जरूर आएगा। आप सोचो कि मेरे को जल्दी किसी जगह पहुंचना है तो मैं रोड प्रिंसिपल्स पालन नहीं करूं, तो अपना ही एक्सीडेंट होने वाला है। और अगर आप सोचो कि देश के हित की कोई बात नहीं है, मेरे घर में पैसा पूरा आना चाहिए, तो वो क्या होगा कि आज नहीं तो कल अगर एक 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 के कारण से जो देश को नुकसान होता है वो वापिस उसका भार कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आने वाला है। हम सब एक बहुत बड़ी चेन के अंदर बंधे हुए हैं, जो एक का असर दूसरे पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पहुंचता ही पहुंचता है।
जी, और हम है सामाजिक प्राणी, मनुष्य है सामाजिक प्राणी, तो उसको हर जगह हर क्षेत्र में एडजस्टमेंट करके ही चलना है। तो इस मूल्य को, इस गुण को हम अपने वृत्ति में, धारणा में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में हम देखते हैं एडजस्टमेंट दिखाई नहीं देता, कोई करना नहीं चाहता, उसको टॉलरेट ही नहीं होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही उसे वो मेंटेन नहीं कर पाता। तो कैसे हम इसको अपनी वृत्ति में लेकर आए?
जो आपने बोला ना कंफर्ट जोन,
जी,
तो ये कंफर्ट जोन जो हमने बना लिया है, देखो सुख सबको चाहिए,
जी,
आनंद सबको चाहिए, आध्यात्मिकता भी इस बात को मानती है
जी,
कि सुख आनंद आत्मा के अंदर की एक जरूरत है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको जरा ठीक तरीके से समझने की जरूरत होती है। उसमें दो तरह की अप्रोच होती है सुख और आनंद के लिए, एक है आउटसाइड इन अप्रोच, आप मेरी प्रेज करो तो मुझे मजा आए, आप मेरा कहना मानो तो मुझे कंफर्टेबल लगे, मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो मेरे को सब लोग अगर पसंद करते देन आई एम हैप्पी, दैट इज आउटसाइड इन अप्रोच, कि सब मुझे एडजस्ट करें, मैं जैसे बोलूं, जैसे उठूं, जैसे खाऊं, आप सब लोग उसको एक्सेप्ट करो तो मेरे को ठीक लगता है, जहां जहां मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है तो आई एम अनकंफर्टेबल, तो मुझे लगता है कि एडजस्ट करना बड़ी बोझ की बात है, बहुत मेहनत की बात है, छोड़ो जाने दो, नहीं मानते हो तो हम अलग हो जाएंगे। आइसोलेशन दुनिया में बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी अप्रोच जो स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है उसको अगर समझ लेते हैं तो हमारी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वह इनसाइड आउट अप्रोच। आध्यात्मिकता हमें ये बताती है कि आनंद सुख आपके अंदर है
जी,
सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करो
जी,
विद प्रॉपर मेडिटेशन उसको एक्सपीरियंस करो, और वो जो अंदर वाला आनंद आपने एक्सपीरियंस कर लिया, अब एक बात ये सोचो कि वो मैंने दूसरों को देना है, मैंने हर कर्म को वो आनंद वो खुशी देते जाना है, तो जब मेरी इनसाइड आउट अप्रोच होगी तो दैट इज द राइट अप्रोच, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज सच में है, और अंदर क्योंकि सोल जो है वो इम्परिशेबल है
जी,
तो अंदर वाला सुख और आनंद अगर मैं बांटने लगूंगी तो अमर होगा, बढ़ता रहेगा, खुटेगा नहीं, और अगर मैं बाहर से अंदर ले जाने चाहती हूँ तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बंद एक टाइट कवर के अंदर मैं कुछ डालना चाहती
हूँ
जो अंदर जाता नहीं है। इसलिए दुनिया हमें कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करे हर एक को शिकायत बनी रहती है।
जी जी, तो ये क्वालिटीज, ये जो नैतिक मूल्य है, समायोजन, एडजस्ट करना, इसके लिए हमें और अपने अंदर और क्या क्या क्वालिटीज लाने की जरूरत है ताकि हम एडजस्ट करना सीखें, हम एडजस्टेबल हो सकें हर परिस्थिति में।
सबसे बड़ी बात इसमें चाहिए फ्लेक्सिबल होना, रिजिडिटीज ना हो, आई कैन डू दिस ओनली आई कांट डू दिस, जितना हमने अपने डूज और डोंट्स की लंबी लिस्ट बनाई हुई है उतना हम रिजिड हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जो बांस का पेड़ है वो झुकता नहीं है तो इसलिए उसको आग लग जाती है, जो पेड़ झुकता है वो फल दे देता है। वैसे भी जब स्टॉर्म आता है, कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जो कोमल कोमल घास होती है, जो बड़ी बड़ी होती है, कोमल कोमल पौधे होते हैं, तेज तूफान आएगा तो सारे मुड़ जाएंगे, जमीन के साथ लग जाएंगे, और जैसे ही तूफान जाएगा वापस खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बेंड नहीं होते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, हमें बहुत विनम्र होने की जरूरत है, अपनी रिजिडिटीज के दायरे को तोड़ने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो शेर भी सुनाते हैं, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है,
अकड़े
रहना
मुर्दे
की पहचान होती है। तो हम जिंदा मनुष्य हैं, तो जिंदा है इसलिए कि हम फ्लेक्सिबल है, और अगर जिस दिन इस शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई उस दिन तो मौत होती है। तो आपस में भी एक दूसरे के लिए कुछ अपनी रिजिडिटीज को हम अवॉइड कर सके और समय अनुसार मोल्ड हो सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक दूसरे के प्रति प्यार, क्योंकि जिसके लिए प्यार होता ना उसकी हम कैसी भी बातों में एडजस्ट कर लेते हैं। समझो मुझे आपसे प्यार है और आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं खाना है, मैंने वो खाना है और आप मेरे साथ खाओ, तो मैं कहूंगी अच्छा अच्छा आप खुश रहें मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्यार नहीं है, नफरत है, तो मैं कहूंगी आपकी मुझे नहीं माननी है, आप मेरी नहीं मानेंगे। तो एक दूसरे के लिए जितना प्यार होता है हम उनके लिए एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी रिजिडिटीज को छोड़ सकते हैं। तीसरी बात, हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि अगर हम एडजस्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, बहुत सारा धन बच जाता है, बहुत सारे वेस्ट थॉट्स बचते हैं। कुल मिलाकर के हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ऐसे ऐसे लोग होना तभी काम करूंगा, ऐसा ऐसा सारा सेटअप होना तभी मेरे से काम होता है, फिर तो वो बात हो जाएगी ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो हम अपनी रिजिडिटीज को कम करते जाएं, एडजस्टमेंट को बढ़ाते जाएं, तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ता है इससे।
जी बिल्कुल सही। और अगर ये ना हो तो मतलब नुकसानदायक कितना बड़ा सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, ये क्या नुकसान हो सकते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में इसकी आज जरूरत है, कर्म क्षेत्र में जरूरत है, प्रोफेशनल लाइफ में जरूरत है। तो अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर ना हो तो ये नुकसानदायक भी है उतना,
बहुत ज्यादा तो नुकसानदायक है।
किस तरह नुकसान?
घरों में भाई बहन लड़ते रहेंगे
जी,
मम्मी डैडी आपस में लड़ते रहेंगे
जी,
डाइवोर्स ज्यादा होंगे
जी,
और प्रॉपर्टी के झगड़े कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमने तो ऐसे वाले भी प्रॉपर्टी के झगड़े देखे हुए हैं, किसी की दीवार से आधी ईंट भी दूसरे के घर के अंदर चली गई और उन्होंने उसका आकर के मर्डर कर दिया। एक पैसे की एडजस्टमेंट भी अगर कोई नहीं करता है ना तो मारपीट तक हो जाती है।
जी
तो एडजस्टमेंट अगर है तो पहली बात तो है लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। अगर एडजस्ट हम नहीं करते हैं तो वर्ल्ड वॉर तक हो जाती है। मैं समझती हूँ कि एडजस्ट न करने के कारण से ही इतनी जातियां, इतने प्रांत, इतने देश और इतने तरह की बाउंड्रीज दुनिया के अंदर हो गई है। अगर हमें ठीक एडजस्टमेंट करना आता तो बापू गांधी ने जो सपना देखा था, मेरा देश राम राज्य होना चाहिए, तो यहाँ सचमुच राम राज्य होता, सुख चैन की बंसी बजती। हम वो बात जैसे कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी।
जी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे, वो कैसे हम अपने अंदर लाएं?
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए
जी
फिर से पेशेंस की जरूरत पड़ती है
जी।
हम रिएक्टिव न हो,
तुरंत
इमीडिएट रिएक्ट करने वाला जल्दी से उस बात को समझ नहीं पाया है और रिएक्ट पहले कर दिया। परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा था एज एक्टर, जाओ तुम अनीता के शरीर में जाओ और अनीता की एक्टिंग करके आओ। एक्टर का मतलब होता है टू स्पीक योर ओन डायलॉग ओनली, डोंट बी जजमेंटल अबाउट द अदर पर्सन डायलॉग। और फिर आज का मनुष्य क्या हो गया, अपना डायलॉग क्या चल रहा है, अपनी एक्टिंग क्या चल रही है, उस पर बहुत कम ध्यान है,
अवेयर ही नहीं है।
दूसरा कितना गलत कर रहा है, कहाँ ठीक नहीं कर रहा, उसको करेक्ट करने वाला है,
और गलत चीज पर ज्यादा ध्यान जाता है, दुर्गुणों पर ज्यादा ध्यान जाता है, और इसलिए वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती और एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही होता है।
इसलिए दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश
जी जजमेंटल ना बने,
ना
तो
बने
दो ज्यादा अच्छा,
बनना ही है तो अपने को जज करो ना,
पहले अपने को जज करो,
मुझे खुद को कहाँ करेक्ट करना है। दूसरे को करेक्ट करने का काम हमें तब शुरू करना चाहिए जब खुद परफेक्ट बन गए हैं।
जी बिल्कुल।
जब तक अपने में एक भी गलती बाकी है हमें दूसरे को करेक्शन देने का अधिकार नहीं है।
जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानना चाहूंगी दीदी, आध्यात्मिकता से हम इसे कैसे और ज्यादा विकास कर सकते हैं? आप थोड़ा इसको स्टेप वाइज अगर बताएं कि पहले क्या जरूरी है, इसकी बेसिक नीड इसकी क्या है, और कैसे हम इसको अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, इस गुण को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि एक ही परिस्थिति नहीं है जीवन में, कई परिस्थितियां हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए।
मैं एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हूँ
जी,
और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब से मैंने ये स्पिरिचुअल पाथ अडॉप्ट किया है तो मेरी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी थाउजेंड्स टाइम बढ़ गई है।
जी,
क्योंकि जब मैं छोटी थी, बचपन में थी, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली, गुस्से वाला मीन्स ही क्या कि दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और रिजेक्ट करते हैं हर एक को, तो गुस्सा करते हैं, इरिटेशन में आते हैं। लेकिन जैसे इस आध्यात्मिक जीवन में मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहला ही सबक जो मैंने प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ के अंदर, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति का अवतार हूँ, मेरा जन्म इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ है। जैसे ही मैंने ये वाला प्रैक्टिस किया और बहुत सिंसियरली मैंने ये वाली प्रैक्टिस की, तो मेरे शॉकर्स मजबूत हो गए
जी,
क्योंकि आउटवर्ड प्रेशर्स तो आएंगे सोसाइटी के अंदर, सब लोग मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे। मुझे धीरे बोलना पसंद है तो कोई ऊंचा बोलता है, मुझे जल्दी सोना पसंद है तो कोई देर तक लाइट जला करके रखता है, मुझे बिना मिर्ची का भोजन पसंद है तो दूसरे वाला तेज मिर्ची डाल देता है। बहुत लोगों के साथ हम रहते हैं, चाहे हम व्हाइट साड़ी पहनिए, तो अभी जंगल में तो नहीं रहते, हमारे सेंटर पर बहुत सारी सिस्टर्स होती है, हमारा 25,000 सिस्टर्स का बहुत बड़ा परिवार है, इतनी सिस्टर्स साथ में रहती है। तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने अंदर की अपनी पीस मेंटेन की ना, तो बाहर वाली अशांति ने अटैक करना
ये
बंद
बहुत
कर दिया।
जरूरी है, अंदर की पीस मेंटेन करनी जरूरी है।
मेरा ऑरा स्ट्रांग हो गया। अब मुझे लगता है जो मेरे पास अशांति का अटैक लेके आता ना
जी,
वो मेरे से शांति की मार खाता है,
वो डिसॉल्व हो जाता है,
तो चेंज हो जाता है। मेरी क्षमा करने की ताकत बढ़ गई है, जरूरी बात है, सोसाइटी में है और लोगों के साथ है तो गलतियां भी करेंगे वो लोग, तो गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। ये बात मेरे अंदर इतना डीप चली गई है कि अब मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं। गलती कर उसका पार्ट है, बेचारे को करना ही ऐसा आता है ना, डोंट माइंड। मैंने अपने माइंड को एक बात पढ़ा दी है, आई हैव नो माइंड टू माइंड अदर पर्सन्स जॉब।
बिल्कुल ठीक,
ये दूसरा कर रहा है ना, मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना सीख लेना है। फिर भी अगर कोई काम ऐसा है कि दूसरे के कारण से मेरा काम बिगड़ता है, तो मैं उसमें कई तरीके यूज करती हूँ। पहले प्यार से समझाती हूँ, रिएक्शन आ गया तो छोड़ देती हूँ, फिर मेंटली गुड विशेस बनाए रखती हूँ, आज नहीं तो कल इसको समझ आ जाएगा, और वो मेंटल गुड विशेस मैंने देखा है बहुत
बहुत
अच्छे से काम करती है। पर चांस कोई व्यक्ति भी नहीं सुधरा और मेरा काम भी खराब हो रहा है, देन सबसे अच्छा तरीका टॉलरेट करती हूँ। सब काम सदा नहीं बना करते हैं,
जरूर
कुछ फेलियर्स भी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेने चाहिए।
जी,
फेलियर्स एक्सेप्ट करने से आपकी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती
है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है,
एक्सपीरियंस भी बढ़ता है।
जी,
फेलियर्स भी बुरे नहीं होते।
जी,
एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द सक्सेस।
जी बिल्कुल,
इसलिए एडजस्टमेंट के नाम पर हम सिर्फ ब्लेम ना करते रहे, इसने कहना नहीं माना ना इसलिए काम बिगड़ गया, ये अगर ऐसा नहीं करता ना
होता
तो
है, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसी आती हैं,
ऐसी आती है,
बहुत बड़ी रूप में भी आती है, उस समय हम नहीं एडजस्ट कर पाते हैं,
हम
वहां हैंडल करना
मुश्किल, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं।
जी, वहां पर कैसे हम हैंडल करें?
हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, सिचुएशन को, पर्सन को ब्लेम मत करो।
जी,
जितना आप ब्लेम करते जाएंगे उतना अपनी परफॉर्मेंस लो जाती जाएगी।
बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि अगर ब्लेम दूसरे पे गया तो परफॉर्मेंस दूसरे की बेटर चाहिए ना। अब दूसरे की परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो आपका सारा एफर्ट दूसरे की तरफ चला जाता है। अगर अपने को चेक करेंगे तो सारा एफर्ट अपने पर जाएगा और अपने पर किया हुआ एफर्ट प्रोडक्टिव होता है, दूसरे पर किया हुआ एफर्ट उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। हाँ, अगर करना भी है दूसरे पर एफर्ट, उसका भी एक तरीका है, रोल मॉडल बनाओ
जी,
और जिसको आपने चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले उसको बहुत सुख दो, बहुत प्यार दो, बहुत ट्रेनिंग दो, उसका विश्वास जीतो। जब आप दूसरे का विश्वास जीत लेते हैं, इतना प्यार दे देते हैं, तब वो आपका कहना मानने के लिए तैयार हो जाता है।
जैसे आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ कि अगर एडजस्टमेंट हमसे कहीं नहीं हो रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम सामने वाले की परिस्थिति या उसके मन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, हालातों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से।
वो भी एक तरीका
जी,
है
जी।
सबसे पहला जोर अपने पर लगाना चाहिए। चलो, आप एक ग्रुप लीडर हैं, आपका काम ग्रुप से ही होने वाला है, तब आपको ग्रुप पर काम करना है, पर ग्रुप पर काम करने टाइम भी आपको ये अटेंशन रखना चाहिए कि ये लोग आपके लिए नहीं, आप इनके लिए हैं
जी,
और आपको पहले उनको कुछ देना है
जी,
उसके बाद कुछ मिलने वाला है
जी।
तो मैंने देखा है कि ये छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखते बहुत अच्छा एडजस्ट कर पाते। आज मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इतने बड़े 9 लाख भाई बहनों के परिवार के अंदर हूँ और मेरे को फील होता है कि ए टू जेड ये 9 लाख तो क्या पूरा वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ आके रहे, आई कैन एडजस्ट
जी,
मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है।
बहुत सुंदर दीदी, आपने समायोजन एडजस्टमेंट पावर पर इसे हम जीवन में कैसे लाए आपने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से हमें समझाया, और हम आपके जो पर्सनल अनुभव भी आपने हमसे शेयर किए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जीवन में इसे जरूर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आकर अपने विचार इस पर देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, समायोजन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है आज जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, क्योंकि अगर हमें एडजस्टमेंट करना नहीं आता तो हम कहीं पर भी ना आगे बढ़ सकते हैं, ना प्रिय बन सकते हैं, ना दुआओं के पात्र बन सकते हैं। एडजस्टमेंट पावर अपने अंदर लाने के लिए पहले जरूरी है अपने को एडजस्ट करना, अपने अंदर वो पावर लाना। तो जैसा कि दीदी ने हमें बताया, हम इसे अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपका भी सहयोग इन नैतिक मूल्यों को उजागर करने में, समाज में उजागर करने में आपका भी सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अंक में फिर से नए नैतिक मूल्य के साथ हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अंतर से